ओम शांति। बाबा के बेहद घर में आप सभी वर्तमान समय को देखते हैं। बाबा ने अपने घर को, अपने बच्चों को कितने प्यार से पाला है। जो दुनिया में सुख साधन सुविधाएं हैं, संगम पर बाबा ने सब बच्चों के लिए उपलब्ध कराई, लेकिन यज्ञ का फाउंडेशन त्याग है, बलिदान है, समर्पण है। ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखेंगे, ब्रह्मा बाबा एक बहुत बड़े ज्वेलर, बहुत बड़ा बिजनेस। शिव बाबा मिले, निश्चय हुआ एक धक से सारी संपत्ति, सब कुछ कन्याओं माताओं को समर्पित कर दिया। वही एक ड्रेस, कुर्ता धोती पहन के बाबा ने अपनी पूरी जीवन त्याग में व्यतीत की। श्री कृष्ण की नंबर वन आत्मा वैकुंठ नाथ, कलयुग के अंत में जब ब्रह्मा के रूप में शिव बाबा ने उन्हें अडॉप्ट किया, ब्रह्मा बाबा के जीवन का एक ऐसा उदाहरण जो आज तक सभी ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कभी भी बच्चों से नहीं पूछा कि इतनी सब संपत्ति समर्पित की कहाँ गई, किधर गई, किस में खर्चा हुआ। बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ कर्मणा सेवाएं करना, इतनी बड़ी आयु में, 60 वर्ष की आयु में शिव बाबा आए, 14 साल तक कराची और हैदराबाद में रहे और 74 ईयर्स की आयु में माउंट आबू आए ब्रह्मा बाबा। 1950 में माउंट आबू में प्रवेश हुए और यहां पर रहकर जिस तरह से परीक्षाओं का सामना किया, वहां तो लौकिक का ही सामना था, समाज का सामना था, नया ज्ञान, नई धारणाएं, बहुत विरोध हुआ। हर पल बाबा को गालियां खानी पड़ी। लोग तो शिव बाबा को पहचानते नहीं थे, वो समझते थे दादा ही सब कुछ कर रहा है, जिसको दृष्टि देता है वो वैकुंठ में चला जाता है, श्री कृष्ण का दर्शन करता है, वो कहता है मैं पवित्र बनूं, मैं योगी बनूं, मैं शाकाहारी बनूं, तो सब पूरा सिंधी समाज विरोधी हो गया। ये कौन सा ज्ञान है, यंग हैं हम लोग, उम्र है खाने पीने मौज करने की। ये कहता है ब्रह्मचर्य में रहो, शुद्ध अन्न खाओ। बहुत कुछ पेपर आए, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कभी पेपर्स की परवाह नहीं की। शिव बाबा का ज्ञान है, शिव बाबा की शिक्षाएं हैं, वो नई दुनिया बनाने के लिए ये सब धारणाएं कर रहे हैं, करा रहे हैं। इसलिए बाबा सदा निश्चिंत रहे, निर्भय रहे, पेपर्स का सामना करते हुए भी कभी भी मुड़ जाए नहीं, पीछे नहीं हटे। कितनी भी लोगों ने गालियां दी, लेकिन बाबा कहते थे निंदक को निहरे, निंदक जो है उनको नजदीक रखना चाहिए। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, उसको मित्र समझना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे शुरुआत से ही, स्थापना के समय से ही बहुत कुछ सहन किया, बहुत कुछ सामना किया। और जब यज्ञ माउंट आबू में आया उसके बाद यहां करीब दो साल तो फुल बेगरी शुरू हो गया, एकदम कुछ नहीं, बच्चे भागने लगे, यज्ञ छोड़ने लगे, मैं कुछ कमा क्या हूं, मैं कुछ करूं। बाबा कहे बच्चे विनाशी धन के पीछे तुम बाबा को छोड़ के जाओगे, ये विनाशी धन तो अपने आप आ जाएगा, तुमको जो बाबा ने धन दिया, ब्रह्मा बाबा को तो बहुत नशा था, अखबारों में लिख दो बच्चे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ओ मंडली, पैसा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बाबा का अंदर का जो फखोड़ था, नशा था, उसी नशे के आधार से बाबा बेफिक्र भाषा, और बच्चों को भी वही नशा चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों को भी बाबा ने ऐसे पार किया जैसे फूलों का रास्ता हो, कांटों के रास्ते में चलते हुए भी फूलों का अनुभव किया। एक बल एक भरोसा, ये बाबा कुछ भी अगर परीक्षाएं ले रहा है तो इससे कुछ नया रास्ता निकलेगा, अगर वो परीक्षाएं नहीं आती तो भारत में सेवाएं प्रारंभ ही नहीं होती, कोई निकलता ही नहीं, सब घर में बैठे रहते। जैसे 14 साल रहे, खाया पिया, कहते हैं ओम मंडली में ब्रह्मा कुमारी तो पिस्ता बादाम खाती हैं, अब पिस्ता बादाम खाने वालों को यहां दाल चावल भी नहीं मिला आबू में आकर के, दोपहर को क्या भोजन मिलेगा कुछ पता नहीं। एक बार सब के सब बीमार पड़ गए, क्योंकि यहां ठंडी बहुत थी, गर्म कपड़े नहीं थे, डॉक्टर नहीं था, दवाइयां नहीं थी। तो बाबा ने कहा एक संदेशी को कि जाओ बच्ची बच्चों के लिए शिव बाबा से दवाई पूछ के आओ। तो वो गई और आके सुनाती है, बाबा ने कहा है 15 दिन इनको छाछ पिलाओ, अब जिसकी सर्दी हो, बुखार हो, ठंडी लगी हो, उसको ठंडी छाछ पिला दो। तो जो पक्के भी थे, निश्चय बुद्धि थे, वो भी हिल गए, ऐसा कैसे ज्ञान है, इससे कैसे शिव बाबा कहेगा। अरे बच्ची छाछ और डोडा खाएंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। और बाबा ने खुद जो संदेश आया उसके आधार से 15 दिन तक यज्ञ के अंदर कुछ भी नहीं बना, केवल छाछ और बाजरी के रोटी। उससे कई लोगों का रोग ठीक हो गया। पेपर था, सुना होगा कहानियां ऐसी, हमारी दादी थी ना निर्मल शांता दादी को दमा थी, और डॉक्टर्स ने ज्योतिषियों ने बोल दिया था कि अभी ये जाने वाली, शरीर छोड़ देगी, बचेगी नहीं। तो बाबा से दवाई पूछवाई, बहुत दमा थी, बहुत सांस फूलती थी। तो संदेशी गई और संदेशी कहती है बाबा ने कहा है इसके ऊपर बर्फ का पानी डालो। अब ऐसा संदेश लेके आए तो बाबा ने कहा अभी तो ये गई, जो बच्ची वो भी चली जाएगी, बर्फ का पानी और ठंडी में। लेकिन बाबा को निश्चय बहुत था कि शिव बाबा का संदेश है, शिव बाबा कह रहे हैं, कुछ इसमें भी रहस्य है। कभी भी इन्होंने, बाबा ने ये नहीं कहा ऐसा क्यों बोला, ऐसा संदेश नहीं होता। लेकिन एक बात कह दी संदेशी जो लाई थी संदेश की, बाबा ने कहा है बर्फ के पानी से नहलाओ, तो उसको कहा तुम इसको ले जाओ बाथरूम में, बर्फ का पानी तुम्हें रुक डालना है इसके ऊपर, मरे भले कुछ अड़ जाने। तो जब वो गई नहलाने के लिए, दादी तैयार हो गई, एकदम निर्भय होकर के गई, भले बर्फ का पानी बाबा ने अगर कहा है तो डालो। बैठी और ज्यों बाल्टी उसने बर्फ के ऐसे उठाई, फिर से ट्रांस में चली गई, पानी डाला नहीं। लेकिन ट्रांस में जाते ही बाबा ने उसको बड़ी आयु का वरदान दे दिया। इतना निश्चय भगवान के ऊपर, 98 वर्ष तक जी, आप समझ सकते हो बाबा से वरदान मिल गया। तो ऐसे ऐसे पेपर्स दादियों ने बहुत निश्चय के आधार से क्रॉस किए। यहां पर एक दिन, वैसे तो बाबा क्या करता था, मुरली के बाद कहता था नाश्ता कुछ नहीं है, क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, आई नहीं कुछ। तो चलो बच्चे पहाड़ पर, पहाड़ी पर बाबा आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे जाना। और वहां पर जंगल में बरसातों के बाद करौंदे थे, जामुन थी, आम थे। अरे बच्चे देखो कितना प्रकृति ने सुख दिया है, खाओ खूब जितना खाना है, नाश्ता करके आओ। अब वहां से आते थे, अच्छा बच्चे थोड़ा रेस्ट करो, 1 बजे भोजन की बेल बजेगी, 8-9 बजे तक कुछ पता नहीं है क्या बनेगा, कुछ है ही नहीं। लेकिन 10 बजे पोस्ट में कहीं न कहीं से लिफाफे में 500 रुपया 1000 रुपया आ गया और उसी से भोजन बना। उस समय वो बहुत था। एक दिन बाबा ने मुरली चलाते चलाते कह दिया कि बच्चे होली का त्योहार है, आज मुरली थी ना होली, होली के त्योहार पर मधुबन में जलेबी का भोग लगता है। अरे बच्चे बाबा जलेबी खिलाएगा। तो भंडारे में बहन जो थी बाबा के पास दौड़ के आई, बाबा आटा ही नहीं है, जलेबी के लिए तो चीनी चाहिए, तेल चाहिए, मैदा चाहिए, कुछ तो नहीं है। और बाबा कहता जलेबी खिलाएंगे। बच्ची मैंने नहीं कहा, अब ब्रह्मा बाबा तो खिसक गया, मैंने नहीं कहा, शिव बाबा ने कहा। अब शिव बाबा कहता है तो खिलाएगा, लेकिन विधि है, चलो आज 2 बजे उठ के योग करेंगे। यहां जो कोठी है ना, ब्रज कोठी जिसको बोलते हैं भरतपुर, उसी में रहते थे उस समय। 2 बजे उठ के योग करना शुरू किया, लाल लाइट हो गई। सामने एक परिवार रहता था सिंधी भाई बहनों का, उसमें माता तो बड़ी अच्छी थी लेकिन वो भाई बड़ा एंटी रहता, उसकी नींद फिट गई। कहता है तेरे दादा को देख क्या हुआ, 2 बजे भी बच्चों को सोने नहीं देता, त्योहार पर भी योग करा रहा है, और मुझे कहता है तेरे पास जितना रखा है दे जा, देख अलमारी में कितना रखा, दे आ जा करके। बेचारी डरते डरते सारा पैसा इकट्ठा किया जो रखा था उसकी अलमारी में, रात को ही लेकर के दादी के हाथ में देने आ गई। दादी तुम क्यों रात को आई, तेरा पति मारेगा। बोलती है उसी ने तो भेजा, उसको नींद नहीं आती, ये ले लो मैं जाती हूं। पैसा आ गया, सवेरे सब सामान आया, समय पर भोग लगा, जलेबी सबको मिल गई। ऐसा था हमारा बाबा, पेपर लिया लेकिन पेपर में बच्चों को जो पास हो गए, निश्चय बुद्धि थे, हिले नहीं, वो किसी भी पेपर से डरे नहीं। प्यार तो था बाबा से ना, बाबा के प्यार में जिएंगे मरेंगे लेकिन तेरे दर को नहीं छोड़ेंगे। कितना भी सहन करना पड़ा, कितना भी त्याग करना पड़ा, लेकिन एक बल एक भरोसा, जो कुछ बाबा ने कहा, क्या कहा बाबा, जो बच्चे थे ना, जो बहनें थी भाई थे तो छोटे ही, उनके परिवार वाले पैसे वाले थे, सब कमाने वाले थे। बाबा ने कहा जाओ भले उनके पास मिलने, लेकिन मांगना नहीं कुछ, मांगने से मरना भला, हाथ नहीं फैलाना किसी के आगे। इतना बाबा ने पक्का करा दिया। ज्ञान धन दान करो, तुम्हारे पास ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, इस धन के आगे वो धन क्या है। इतना बाबा नशा चाहता था। और बहने पक्की, भाई बहने जो पक्के थे, जो कच्चे थे तो खिसक गए, वो त्याग नहीं कर पाए। लेकिन इन बहनों ने जो पक्की थी, वो दादियां जिनको हम कहते याद करते, जैसा बाबा ने कहा। एक बार की कहानी सुनाता हूं मैं। जब सेवाएं शुरू हुई तो गुलजार दादी बहुत छोटी और इनोसेंट लगती थी, बहुत भोली। तो बाबा ने कहा बच्ची जाओ तुम लखनऊ में गवर्नर हाउस में सेंटर खोल के आओ, यूपी में लखनऊ राजधानी है, जाओ वहां पर सेंटर गवर्नर हाउस में खोल के आओ, तो पहले बार बोलती बाबा लखनऊ कहाँ है, आए तो पाकिस्तान से थे, मना कराची से आए थे, लखनऊ कहाँ है। अरे बच्ची अंधों ने मुल्तान को ढूंढा, तेरे को लखनऊ नहीं मिलेगा, त्रिनेत्री है, त्रिनेत्री है, तेरे को लखनऊ नहीं मिलेगा, जाओ बच्ची को बिठा दो लखनऊ की तरफ ट्रेन में। अब जनरल डब्बे में बिठा दिया, पैसा तो था ही नहीं, टिकट कहां से, तो जनरल डब्बे में बिठाया और उसमें सब बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, और दादी ने तो कभी देखा ही नहीं था ऐसा माहौल, बदबू गंदगी धुआं, यहां से तो चढ़ी लेकिन उल्टियां होने लगी, सहन नहीं कर पाई। अजमेर है, अजमेर में उतर गई, उतर करके सीधा स्टेशन मास्टर के पास गई, जाके कहती है तेरी ट्रेन में लोग इतना धुआं करते हैं, बीड़ी पीते हैं, मुझे लखनऊ जाना है, भगवान ने मुझे भेजा है, मैं ऐसे में तो नहीं जा सकती, किस में जाऊं। तो कहता दीदी पैसा है आपके पास, फर्स्ट क्लास में बिठा देता हूं, उसमें बीड़ी नहीं पियेंगे कोई। बोली पैसा क्या होता है, इतनी बोली थी, पैसा क्या होता है, पैसा पता ही नहीं था उस समय। तो समझ गया कि तो बहुत अंदर बाहर साफ है, सच्चे हैं। कहता ठीक है, अपने पैसे से टिकट बना करके उसको बिठा के, दादी को बिठा के आया। अब जब बैठ के गई, लखनऊ पहुंची, तो वो पैडल रिक्शा थे वहां पर, बैठ गई, कहते गवर्नर हाउस ले चलो। तो वो बेचारा डरे, दीदी गवर्नर हाउस में घुसने नहीं देते, पुलिस खड़ी होती, सिक्योरिटी, तुम चल ले चल। जब वहां पहुंचे, पुलिस वाले ने रोका, कहती है मुझे बाबूजी से मिलना है, बाबूजी से मिलना है। तो उसने समझा शायद उनके कोई संबंधी होंगे गवर्नर के, जाओ अच्छा, चली गई। जब विजिटिंग रूम में बिठा दिया तो सब पूछने आया किससे मिलना है, किससे बात करनी, बाबूजी को बुलाओ। गवर्नर ने बोला, गवर्नर साहब आए सामने नमस्ते करके, गवर्नर साहब बाबा ने मुझे माउंट आबू से भेजा है, हमको गवर्नर हाउस में सेंटर खोलना है। अरे आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, कौन सा सेंटर खोलना है, कुछ बताया नहीं, बाबा ने मुझे माउंट आबू से आपके पास भेजा है, मुझे आपके यहाँ सेंटर खोलना है, बाबूजी आप मदद करो, मुझे सहयोग दो। बाबूजी पिघल गए, ठीक है दो कमरे उधर दे दो इनको, बहुत बड़ा गवर्नर हाउस था, और गवर्नर हाउस में सेंटर खोल दिया जा करके, न जान न पहचान। दादी का बाबा का जो कहना दादी को करना बस, और वहां लखनऊ में अभी भी कितने सेंटर खुले हैं। वहां से हमारी मोहिनी बहन जितना दादी के साथ रहते थे, वो लखनऊ से निकली, और लखनऊ में चार दादियां रही यूपी में, अलग अलग कोने में, शांतामय दादी वहां रहती थी, भगवती दादी, सती दादी, किशनी दादी, सब दादियों को बाबा ने भेजा जाओ वहां सेवा करो। लेकिन वो बहुत बड़ा त्याग का समय था, बिल्कुल समर्पण भाव चाहिए, कुछ नहीं अपने लिए। एक बहन को यूपी में भेजा, वहां पर नदी पर बहुत बड़े बड़े तरबूजे बड़े बड़े होते हैं, तो उसके सेंटर पर कोई ला करके रख दिया करके, दीदी खाना, कहती मैं इतना बड़ा तरबूजा क्या खाऊंगी, बाबा के पास तो बहुत सारे लोग रहते हैं, बाबा को भेज देती हूँ, कैसे भेजूं क्यों पता ही नहीं। उसने चाकू लिया और चाकू लिख के लिखती है ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू राजस्थान, और कहती जो ट्रेन उधर जाती है उसमें रख के आ जा। एक भाई को भेज करके, जो आबू की तरफ ट्रेन आती थी, डायरेक्ट तो नहीं थी, दो तीन ट्रेन बदल के माउंट आबू आती थी यूपी से, और यहां आई और लुढ़कते लुढ़कते तरबूजा बाबा के हाथ में आ गया। बाबा ने देखा ये कहां टिकट नहीं, कोई एड्रेस फॉर्म नहीं, कहीं कुछ नहीं, कैसे आ गया। बाबा कहता वो बच्ची वही होगी, सच्ची दिल वाली भोली बच्ची, ऐसे अच्छे बच्चे बाबा के अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, त्याग माना त्याग, मैं दो रोटी सूखी खाऊंगी, इतना त्याग करके स्थापना किया, जरा भी अपने प्रति नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कोई से न धन चाहिए न साधन चाहिए, गंगा के किनारे, जमुना के नदी के किनारे, रेत में बैठ के चित्र लेकर के ज्ञान देना शुरू किया। जो आए देखे, अरे दीदी ये स्थान आपके लिए नहीं है, ये तो भिखारी लोगों के लिए, आप चलो, आप कमरा मैं देता हूं, मकान दे देता हूं, सेंटर खुलने लगे। क्योंकि उनकी जो प्योरिटी थी, जो उनके चेहरे की चमक थी, जो बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा थी, वो चेहरे से झलकती थी, इसलिए उनको देख करके लोगों को आता था, अरे ये क्यों यहां बैठे हैं। एक सन्यासी आया, देखा कि बड़ा ऊंचा ज्ञान सुना रही है, बैठी है नदी पर, तो कहता है कि आप ऐसा करो, ये ज्ञान हमारे आश्रम में आके सुनावा करके। तो बाबा को सुनाया, बाबा ऐसा ऐसा निमंत्रण मिला है, हरिद्वार का निमंत्रण है, दो सन्यासी आए हैं, क्या करूं। हाँ बच्ची जाओ। दो दादियों को भेज दिया, वो दादी थी एक मनोहर इंदिरा दादी, एक गंगे दादी, और दोनों बहुत अच्छी स्पीकर थी, बहुत अच्छा भाषण करती थी। तो जब उसके सन्यासियों के शिवानंद का आश्रम था, वहां गई तो गंगे दादी ने गीता के ऊपर बहुत अच्छा भाषण किया, सारे सन्यासी प्रभावित हो गए। उसके बाद वहां कहा, जापान के अंदर धर्म संसद हो रही है, आप ये ज्ञान वहां सुनाएंगे। बाबा से पूछा, हाँ बच्ची, निमंत्रण मिलता है तो छोड़ना थोड़ी है, जाओ बच्ची तैयारी करो। अब उसमें फिर दादी को, दादी प्रकाश मणि, दादी रतन मोहिनी और दादा आनंद किशोर, तीन को तैयार किया, और 54 में वो तीनों गए जापान। और जापान में एक प्रोग्राम नहीं किया, एक साल वहीं रहे और खूब सेवा किया इष्ट की, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, पूरी सेवा करने के बाद, एक साल रहने के बाद, जो कोई सहयोग दे उसके पैसा नहीं लेती, कि चित्र छपवा दो, चित्र छपवाए, त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, ये सब चित्र बनवाए, और पूरा ही कंटेनर रिसिप्ट से लेकर के आए मद्रास में, चेन्नई में उतरे, बाबा को बताया, बाबा इतना बड़ा हम चित्रों का कंटेनर लेके आए हैं। बाबा ने कहा, बच्ची इधर नहीं आना, माउंट आबू नहीं आना, ये चित्र लेकर के चारों तरफ जाओ, पूरे भारत में सेवा करो। आए थे जापान से सेवा करके, फिर यहां से जो राजधानी थी भारत की, वहां पर गए, सेंटर्स खोलना शुरू किए, सेवाएं शुरू किया। फिर जब बाबा के पास आए तो बाबा इतना खुश, प्यार का सागर, प्याल उठाने के लिए तैयार, कि मेरे बच्चे इतनी सेवा करके विदेश से आए हैं। तो बाबा ने गिन्नियों का हार बनाया, सोने की गिन्नी होते, वो हार बना करके दादियों को पहनाया, ये बच्चों ने इतना प्यार के सागर ने, प्यार में भी कमी नहीं रखी, लेकिन सेवा करने के लिए कितना त्याग, कितना बलिदान। और जहां सेवा करने जाएं, पहले पहले तो साक्षात्कार हो जाए, बहुत सारे लोग जुड़ जाएं, 50 का क्लास, 100 का क्लास, और उसके बाद जब धारणाओं की बात आए तो घर घर में झगड़े। पवित्रता, शुद्ध शाकाहारी भोजन, खास तो यही दो बातें, और उसके कारण हर घर में झगड़े, जहां देखो वहां। लेकिन जो पक्के थे, जो निश्चय बुद्धि थे, बाबा कहता जो देवता घराने के थे, वो देवता घराने वाले तो बाबा को छोड़ नहीं सकते, एक बार मिल गया, निश्चय हो गया, बाबा के पास आ गए। तो ऐसे स्थापना के समय इतनी सारी समस्याओं का दादियों ने कितना और निश्चिंत होकर सामना किया। बाबा की स्थापना के कार्य में विघ्न तो आएंगे, ये पक्का था, लेकिन उसमें हिलना नहीं है, अच्छा लडोल एक रस रहना है। और लोगों को तरस ये पड़ता था कि ये इतनी सेवा करती बहने, खाती कब है, रहती कैसे। तो जब दो तीन दादियां हमारी दिल्ली में रह रही थी, सेवा शुरू किया, तो इधर मंदिर में जाना, उधर जाना, उधर जाना, खूब प्रदर्शनी करना, तो एक माताओं का ग्रुप आना शुरू हुआ, मारवाड़ी अच्छे घर की माताएं क्लास में आने लगी। तो देखती थी ये दादियां सारा दिन इधर उधर घूमती हैं, खाती कब है, बनाती कब है। तो पूछने लगी, दादी आपका भंडारा कहाँ है। भंडारा तो था ही नहीं, एक कमरा था, एक क्लासरूम था। तो माताओं ने कहा, जब आप बाहर नहीं खाती हो, हमारे हाथ का नहीं खाती हो, तो कहाँ खाती हो, क्या खाती हो। तो एक दिन अंदर घुस गई जाकर के, तो वहां पर एक छोटी सी को टोकरी में आलू छोटी छोटी रखी थी और एक डब्बे में आटा रखा था और एक छोटी डब्बियों में नमक और हल्दी कुछ मसाला रखा था। तो जब देखा उन माताओं ने तो देखा ये स्टोव एक छोटा सा रखा है, एक छोटी कढ़ाई रखी है, एक कुछ नहीं भंडारा है सब। बोला यही भंडारा है, दादियों का यही भंडारा है और इसमें बाबा हमको 36 प्रकार का भोजन खिलाता है। तो देखा क्या है, कहती आलू काटते हैं, रस बनाते हैं, नमक और हल्दी डालते हैं और रोटी बना के खा लेते हैं। अब बाबा इतना सुकून देता है, इतना सुख देता है, देखो कोई बीमारी है क्या हमको। तो दादियां बड़े नशे से बोलती थी, तो माताओं को आया हम लोग तो इतना खाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, जाओ कुछ ले आते हैं। तो गई मार्केट में, जा करके एक चीनी का डब्बा, एक आटे का डब्बा, एक मसालों का डब्बा, ऐसे करके 8-10 डब्बे घी का, तेल का, सब लेकर के आके सेंटर पर रख दिया। दादियां आप प्यार से बनाओ खाओ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम आपका ये भंडारा भरेंगे। दादी एक दिन दो दिन रही, फिर सारा पैक किया और पैक करके सब माउंट आबू भेज दिया, एक चीज भी अपने पास नहीं रखी। तो शुद्ध फिर उनको देखा कि ये तो फिर कुछ है ही नहीं अंदर, कहाँ चला गया। तो दादियों से फिर पूछा, दादी कहाँ गया सब। बोला बड़ी आपको तो हम दिखाई देते हैं, हमारा बाबा पहाड़ पर बैठा है माउंट आबू में और उनके साथ बूढ़ी बूढ़ी बहुत सारी माताएं हैं, जरूरत वहां है, यहां क्या जरूरत, यहां तो हम मौज से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, इसलिए हमने सब माउंट आबू भेज दिया। बाबा के यज्ञ के प्रति इतना प्यार, इतना स्नेह और इतना बड़ा त्याग, कुछ भी अपने लिए नहीं चाहिए। दो ड्रेस उठाई। जानकी दादी का त्याग अगर आप सुनेंगे ना, लंदन का तो शायद सुना होगा, मैं खुद देख के आया हूं, लेकिन जब इंडिया में सेवा शुरू किया तो 20 रुपया दिया भंडारे से, बॉम्बे में जाओ सेवा करके आओ। एक थैले में एक ड्रेस पहनी हुई और एक ड्रेस हाथ में थैला और 20 रुपया साथ में। बॉम्बे गई, फिर रिक्शा करेंगे तो 5-7 रुपया उसमें देना पड़ेगा, रिक्शा ही नहीं किया, 3-4 किलोमीटर पैदल चल के गई। अब पैसा रखने की आदत तो थी नहीं, 13 रुपया बचे थे और खर्च हुए थे 7-8 रुपया। जो एक जगह पर भाषण करने लगी, क्लास कराने लगी और भूल गई, 13 रुपया को उठा के लेके गया, कुछ नहीं अपने पास। ये भी नहीं कहा बाबा को, बाबा पैसा ही नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन दादी ने उसी में एक ड्रेस पहनना, वही धोना, वही पहनना और दो ड्रेस में जाके बॉम्बे में सेंटर स्थापित कर दिया। सब संबंधी लोगों ने सहयोग दिया, इधर से उधर से। बॉम्बे में ऐसे सेवा शुरू की, पूना में ऐसे सेवा की। इन दादियों ने उस समय जो त्याग किया है, उस आज हम देखते हैं तो भाई दादियों का सब कुछ है, लेकिन फाउंडेशन कितना गहरा होगा आप समझ सकते हो। जब 74 में मैं मधुबन में था, दादी जी पूना में रहते थे, पूना मीरा सोसाइटी से ही ज्ञान लेकर के जयंती बहन की मम्मी, पिताजी और माताजी, रजनी बहन और मुरली दादा लंदन गए थे, सेवा कर रहे थे, वहां नौकरी धंधा था, बिजनेस था। तो रजनी माता ने बाबा को कहा, बाबा, बाबा जब अव्यक्त हो गए तो दादियों को कहा, देखो बाबा चले गए विदेश में, सेंटर ही नहीं खुले, आप आकर के यहां सेवा करो। निमंत्रण दिया पहले पहले 71 में। तो बाबा से पूछा, बाबा क्या करें, अव्यक्त बाबा तो आते थे। तो बाबा ने कहा, हाँ बच्चे खुलना तो चाहिए सेंटर्स। फिर 5 भाई बहनों को तैयार किया और जगदीश भाई, रमेश भाई, रोजी बहन, निर्मला दीदी और एक उषा बहन, ऐसे करके हम बाबा ने इनको लंदन भेज दिया। अब लंदन भेजा तो स्थापना में तो समझ सकते हो दादा ने मदद किया थोड़ी बहुत, लेकिन वहां रह करके वहां से अमेरिका, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह राउंड लगाए, चक्कर लगाए और सेंटर खोलना शुरू किए। जहां जहां भी सिंधी भाई बहने गए थे, निमंत्रण देते थे, वहां जाते और वहां सेंटर खोलते। तो ऐसे करके सेंटर खुलना शुरू हुए। 2 साल तक रतन मणि दादी लंदन में जाके रही, 72 से 74 तक। अब 74 में दादी ने जानकी दादी को कहा कि दादी आपको जाना लंदन, और उस समय दादी बेड रेस्ट पर, डॉक्टर ने बिल्कुल चलने फिरने की मना की थी, लेकिन बाबा ने कहा जनक को ही भेजना है, जनक को बुलाओ। अब जानकी दादी आई वहां से, उसको डॉक्टर ने ट्रेन में चढ़ने की भी मना की थी, फिर भी गाड़ी से आई। आई तो देखा है तो दवाइयों पर ही चल रही है, तो दवाइयों पर चल रही है तो यहां पर बाबा कहता है बच्ची तुमको लंदन जाना है। बाबा बोलते बाबा मैं क्या करूं लंदन, मुझे इंग्लिश नहीं आती। बाबा ने कहा नहीं, तुमको मधुबन, दूसरा मधुबन का मॉडल बनाना है, मधुबन का मॉडल जाके लंदन में बनाना है। बाबा कह रहा है ठीक है, दादी हाँ जी किया और सारी दवाइयां जो थी डस्टबिन में फेंक दिया। बाबा जाने, बाबा भेज रहा है ठीक करेगा अपने आप। और दादी जब वहां गई तो बिस्तर नहीं था सोने का, एक कमरा, शायद आप लोगों ने सुना होगा, एक ही बिल्डिंग, एक छोटी सी बिल्डिंग, टेनिसन रोड, और वो टेनिसन रोड में एक कमरे में क्लास और एक में किचन। क्लास में सोने के लिए दादी को नींद नीचे नहीं आती, खांसी आती थी, बहुत ज्यादा खांसी थी, रात भर खांसती थी। तो एक दिन पैदल कर रही थी तो किसी ने अपना दरवाजा निकाल के बाहर छोड़ा हुआ था, और जब कोई सामान फेंकना होता था, कोई नया लगाता था, तो पुराना अपने घर के आगे रख देता, म्यूनिसपालिटी उठा ले जाते। तो दादी ने उस भाई से बोला कि क्यों निकाला तुमने, बोला दादी हमारे काम का नहीं है। बोला ऐसा कर ये उठा करके मेरे सेंटर पर यहां पहुंचा दे। वही दरवाजे को दादी ने संदली बनाई, उसके नीचे सामान रख करके उसी पर सोना और उसी पर सवेरे उठ करके बैठ के क्लास कराना। और रात भर खांसी आती थी तो एक अंग्रेज जो था बाजू में दूसरे मकान दूसरे कमरे में, वो जब नॉन वेज बनाता था तो दादी को सहन नहीं होता, तो उसको लगा दादी मेरे कान रात भर खांसती है। तो आया एक दिन कहता दादी ये चाबी लो, ये भी मकान आप ले लो, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा, मेरे कान आपको तकलीफ हो रही। तो एक कमरे से 2 कमरे हो गए टेनिसन रोड में। और उसके बाद दादी ने जो तपस्या की, त्याग किया, तपस्या की, जो संकल्प किया वो सिद्ध होने लगे। इतना सुंदर ग्लोबल हाउस बन गया, डायमंड हाउस बन गया, फिर ऑक्सफोर्ड में इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर बना दिया। दादी जिधर गई कदम रखे उधर पदम हो गए। तो ऐसे दादियों के त्याग की, तपस्या की अनेक कहानियां हैं। और ये हमारा भाई अभी प्रश्न उत्तर के लिए आ गया है।
ओम शांति। सचमुच राजू भाई जी के मुख से जो भी हम वृतांत सुनते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम यज्ञ की जो शुरुआती दिन है उसमें हम खो गए हैं। और बहुत से भाई बहनों को दादियों के त्याग, उस समय की स्व स्थिति के बारे में कई बार ज्ञात भी नहीं होता है। बहुत सुंदर सुंदर बातें भाई जी के अनुभव से हम सब सुन रहे हैं। कुछ बातें कुछ लोगों के मन के द्वारा प्रश्न आया है और हम सबके मन में जिज्ञासा है। कुछ तो भाई जी ने बहुत सारे वर्णन तो कर दिए हैं, फिर भी बाबा के बारे में जैसे आपने बताया, उसके बाद हम सबके सामने बड़ी दादी जी का बहुत उदाहरण रहता है। भाई जी हमने सुना है कि बड़ी दादी जो थी वो एक बार घर से आने के बाद, अपने लौकिक घर से आने के बाद कभी दोबारा अपने घर नहीं गई। तो थोड़ा हम जानना चाहते हैं भाई जी, बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि जी के बारे में, कि किस तरह से दादी जो है अपने एक बार लौकिक घर छोड़ने के बाद दोबारा नहीं गई, इसके पीछे तो क्या कहानी है, वो थोड़ा हमारे भाई बहनों को बताइए भाई जी।
आप सबको शायद दादी के द्वारा पता चला होगा, दादी जी के जो लौकिक पिताजी थे वो ज्योतिषी थे, और दादी जी का जब जन्म हुआ तो जन्म से ही उन्होंने जन्म पत्री देखी बनाई, तो उन्होंने कहा ये बच्ची तो मीरा है, ये शादी नहीं करेगी और ये तो वैरागी है। तो बचपन से ही लौकिक ने उनको उसी नजर से देखा। दादी की तीन लौकिक बहनें थी, टोटल तीन बहनें थी। एक बहन थी किशनी दादी जो पटना में रहती थी, और एक बहन थी सती दादी जो बॉम्बे में सांता क्रूज में रहती थी। इन दोनों की शादी हो गई थी और दोनों को एक एक बेटी थी। सती दादी की बेटी का नाम कुंज दादी जो पटना में थी, और किशनी दादी की बेटी का नाम मिमलू था, लेकिन मोहिनी हम कहते थे, तो वो बॉम्बे में रहती थी। तो ऐसे पटना और बॉम्बे में दो बहनें, बड़ी बहन पटना में और बीच वाली बहन सांता क्रूज बॉम्बे में, और दादी छोटी थी। तो दादी ने तो शुरू से ही बाबा को पहचाना और ब्रह्मा बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। मम्मा और दादी, ये रामा और राधा, राधा और रामा की जोड़ी थी। एक ही स्कूल में पढ़ती थी, एक ही बेंच पर बैठती थी, और दोनों ही जब बाबा के पास आई पहले पहले, तो बाबा की दृष्टि पड़ी और बाबा ने पहचान लिया, यही बच्चियां आगे चल करके यज्ञ की आधार बनेंगी। तो बाबा ने इनसे प्रश्न पूछा, क्योंकि मम्मा की सगाई हो गई थी, लौकिक अंगूठी पहनी थी, और दादी तो कुमारी थी, उनको तो पता था शादी नहीं करनी। तो बाबा ने पूछा, अच्छा बच्ची ये बताओ तुमको शादी करने के लिए कौन पसंद है, पैंट सूट वाला चाहिए या पीताम्बरी चाहिए। तो पहले मुनी गई, पहले कोई कुमारी से ऐसे पूछ दो आते ही। तो बाबा ने जब पूछा तो समझ गई बाबा क्या चाहता है। तो दोनों के मुख से निकला, हम तो पीताम्बरी से ही करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण का साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा से होता था, पीताम्बरी तो वही है श्री कृष्ण। तो जब ये कहा तो बोला, बच्ची फिर सबसे किनारा करो। तो इन दोनों ने लौकिक से किनारा कर लिया, मम्मा ने और दादी ने। दादी को मुन्नी मम्मा कहते, छोटी मम्मा। और दोनों ने मिलकर के बाबा के यज्ञ को शुरू से ही, समर्पण जब हुआ बाबा, ओम मंडली बनाई, ट्रस्ट बनाया, दादी मम्मा को हेड बनाया और दादी को सेकंड बनाया। और ऐसे शांतामणि दादी और दादी दो और कुछ माताएं, आठ का ग्रुप जो पहला पहला ट्रस्ट बना, उसमें लौकिक बाबा का कोई नहीं था, ये सब अलौकिक थे। और इन्होंने आते ही यज्ञ में अपने को समर्पित किया, उसके बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखा, कभी घर की तरफ नहीं गए।
जी, तो बड़ी दादी की एक कहानी है शुरुआती दिनों की, कि एक बार घर से निकलने के बाद कभी वापस लौकिक घर नहीं गई। भाई जी, जैसे दीदी के बारे में भी कहते हैं, मनमोहनी दीदी, और हमने तो सुना है भाई जी, आपने तो प्रैक्टिकल देखा है, अनुभव किए हैं, कि वो भी बहुत धनाढ्य घर की थी और सोने चांदी हीरे से लदी रहती थी। उसके बाद भी बाबा की जब यज्ञ में आई तो कैसे आसान हो गया ये सब चीज का त्याग करना, हीरे जवाहरात से लदे रहना, बड़े घर से आई, धनाढ्य परिवार से आई, और उसके बाद ये त्याग की कहानी। तो थोड़ा हम दीदी के बारे में भी जानना चाहते हैं भाई जी।
दीदी मनमोहिनी, इनका लौकिक नाम गोपी था, और छोटी आयु में ही इनकी शादी कर दी गई दीदी की। जब शादी हो गई तो ससुराल की तरफ गई, तो जेवर गहने की जो बात है, तो सिंधियों में रिवाज ही होती, बहुत पहनते हैं, और बहुत बड़े पैसे वाले के घर में, जो इनका ससुर का घर था, मुखिया का घर था, सिंधियों के मुखिया लोग थे। और इनका जो लौकिक भाई था, उसका अभी भी हॉस्पिटल है बॉम्बे में, जसलोक हॉस्पिटल। तो दीदी लौकिक में दोनों घर से, पियर घर ससुर घर से, बहुत बड़े पैसे वालों के घर की थी। लेकिन जब एक बार एक धक से निश्चय हो गया बाबा को देखा, और बाबा से इनको अनुभव हो गया कि यही भगवान है, शिव बाबा का परिचय नहीं था, यही भगवान है, श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। तो दीदी को देखते ही निश्चय हुआ, और निश्चय के बाद एक धक से सब कुछ छोड़ दिया, और अकेले नहीं छोड़ा, उनकी लौकिक माँ क्वीन मदर और उनकी छोटी बहन शैलेंद्रा दादी, ये तीनों लोग एक धक से भागे घर से, लौकिक अलौकिक दोनों, मना ससुराल से पियर से, दोनों से तीन जने निकले। और ऐसे इनके जो चचेरा संबंध था, वो थी एक ब्रजशांता दादी, पूना में रहती थी, और उनकी बड़ी बहन थी हरदेवी बहन, और उनकी माँ। तीन जने वो और तीन जने ये, एक ही ज्वाइंट फैमिली से छह बहनें जब निकल आई संस्था में आ गई तो पूरे सिंध में हंगामा हो गया। ये कौन सा ज्ञान है, ऐसा क्या इनको मिल गया, इतना धन धान संपन्न परिवार सब कुछ है और ये बाबा के पीछे न कुछ चाहिए, सब छोड़ दिया, ऐसे देवर जेवर एवर पति को छोड़ दिया, सब धन छोड़ दिया, साधन छोड़ दिए और बाबा के पास आ गई। और आई तो बाबा ने उनको कैसे इनको संभाले, कैसे रखें, क्योंकि बहुत विरोध हुआ, पिकेटिंग हो गई, हंगामे हो गए। लेकिन जब हैदराबाद से कराची में आए तो बाबा ने युक्ति रची और युक्ति ये रची, दीदी जी को माताओं की संभालने के लिए सिलाई स्कूल खुलवा दिया। सिलाई स्कूल की टीचर बन करके दीदी रही, क्योंकि स्कूल तो पढ़ी नहीं थी लेकिन सिलाई सिखाती थी। तो माताएं जितनी आई उनको दीदी ने सिलाई सिखाना शुरू कर दिया। और वो बोलते थे अगर लौकिक वाले तो दीदी कहती थी मैं अपना पैसा कमा के अपने अपने खर्चे से रहती हूँ, मुझे तुम्हारा खर्चा नहीं चाहिए, बाबा भी मेरे को कुछ नहीं दे रहा है, मैं अपना खुद कमा रही हूँ। तो दीदी ने माताओं की संभाल किया शुरू शुरू में, और उनकी मदर तो साथ में थी, और साथ साथ ये जो दादी प्रकाशमणि और चंद्रमणि दादी ये सब पढ़ी लिखी थी, ये टीचर बनी बच्चों की, जो माताओं के साथ बच्चे आए थे ना उनका बोर्डिंग खुलवा दिया बाबा ने, उनकी वो टीचर बनी
जी।
तो स्थापना के अंदर ऐसे ऐसे शुरुआत हुई
जी भाई जी। तो ये तो दादियों के त्याग के बारे में हम जितना सुने उतना कम है, लेकिन त्याग के साथ साथ आपस में प्यार का भी बहुत महत्व है। और आजकल जो बाबा के बच्चे निकल रहे हैं वो प्यार के कारण ही चल रहे हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में भाई जी दीदी और दादी के लिए कहते हैं कि ये दो जिस्म एक आत्मा थे, बाबा के अव्यक्त होने के बाद यज्ञ का कारोबार दोनों के हाथ में आ गया, बड़ी दादी और दीदी। तो ये कहानी के किस रूप में है कि दो जिस्म एक आत्मा थे और कैसे यज्ञ का संचालन इन दोनों ने मिलकर के किया?
ये तो लंबी कहानी है और मेरा प्रैक्टिकल 11 साल का अनुभव है साथ में
जी।
क्योंकि बाबा जब अव्यक्त हुए तो दीदी को बाबा ने बड़े युक्ति से पहले सेवा पर भेज दिया, सामने नहीं थे जब दीदी शरीर छोड़ा। और दादी बॉम्बे में थी, दादी को रोका और रोक करके बाबा ने उनके हाथ में हाथ दे करके शरीर छोड़ा, अपनी सारी बिल पावर जैसे दादी को सौंपी। और दीदी मम्मा की सीट पर थी, मम्मा की चारपाई पर ही रहना, मम्मा के बाद दीदी दिल्ली से यहां आकर के रही थी, पूरी कंट्रोलर दीदी थी। लेकिन जब दादी जी के हाथ में पावर आई तो दादी ने जो रात भर फोन किए सबको समाचार दिया तो लोग समझते थे आई कहां से, ये तो बॉम्बे में रहती और ये समाचार कैसे दे रही कि बाबा ने सही छोड़ा। लेकिन फिर जब देखा कि दादी बहुत उस समय शक्ति स्वरूपा बन के उस पेपर में पास हुई, ब्रह्मा बाबा सही छोड़े, बॉडी सामने है और उसके बीच में एक आंसू न बहाएं, एकदम शक्ति स्वरूप होके सब संभाल लें, तो दादी के हाथ में, दादी और दीदी को बाबा जब 21 जनवरी को आए तो आते ही उनके कलश रखा सिर पर और कहा अभी ये दोनों बच्चियां मिल करके आगे का कार्य देखेंगी, बस इतना ही बाबा ने कहा। और फिर दीदी दादी ने बाबा के हर संकल्प को हमें पूरा करना है, साकार के समय जो बोला है। फिर दोनों ने क्या किया, गुलजार दादी को साथ लिया। तो गुलजार दादी बाबा के पास जाने में टाइम नहीं लगाती थी, एक मिनट में ऐसे चली जाती थी, जाओ बच्ची, जाओ गुलजार, पूछ के आओ बाबा से। बिना पूछे दादी दीदी ने कोई कदम नहीं उठाया, हर कदम में बाबा को पूछो, बाबा को पूछो। तो दीदी दादी ने बाबा के बाद यज्ञ को कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए उन्होंने सबको अपने से बड़ा समझा। कभी नहीं कहा मुझे हेड बनाया गया, मैं हेड हूं, मैं छोटी हूं, आप सब बड़े हो। बहनों को भी साथ लिया, दादियों को भी उतना सम्मान दिया, भाइयों को भी साथ लिया और सब जो भी प्लान, दादी को नए नए रोज प्लान आते थे, ये भवन बने, यहाँ पर ये हो, यहाँ ये हो, क्योंकि बाबा ने उनको सब समझाया था ऐसे ऐसे करना है। साकार में ही एक दिन चक्कर लगवाया था पहले दिन, तो दादी को बहुत प्लान आते थे। और हर साल 72 से मुझे, मैंने खुद देखा है, हर साल एक नई बिल्डिंग बनवाई और प्लानिंग अच्छी, और सबकी पालना दीदी करती, घर में घर की पालना दीदी करती और दादी बाहर की सेवाओं को देखती है। जहां पर भी कोई प्रोग्राम हो, भाषण करना हो, ये करना हो, मुरली सुनाने की सेवा दादी की और दीदी का, घर के बच्चों की पालना कैसे करें, कोई आ गया उसको सौगात क्या देनी है, उसको रिफ्रेश कैसे करना, उसको पिकनिक कैसे करानी, वो दीदी बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन दोनों में इतना विचारों का मेल था, संस्कार नहीं एक थे, संस्कार भिन्न थे, लेकिन विचारों को मिलाया। एक ने कुछ कह दिया तो उसने हाँ जी किया, कभी कट नहीं किया। एक छोटी सी बात सुनाता हूँ, रमणीक है, दादी 77 में विदेश गई, वर्ल्ड टूर किया, सेवाएं शुरू हो चुकी गई थी, सब जगह का निमंत्रण था, तो दादी जी और रमेश भाई दोनों ही पूरे वर्ल्ड टूर करके आए। जब वर्ल्ड टूर करके आए तो इतनी सेवा हुई, इतना विस्तार हुआ, तो दादी जब मधुबन में आई तो कहती है, दीदी मेरी एक दिल है। क्या दिल है? इन मधुबन निवासियों को एक तेरी काट की ड्रेस देंगे सौगात। दादी ने ऐसे दीदी को बोला, दीदी तेरी काट की सौगात, हम लोग को तो मोटा लट्टा मिलता था पापलिन का, पापलिन या बहुत एकदम मोटा लट्ठा का कपड़े का मिलता था, ये टेरी का नाम ही नहीं था। अरे इनको देह मान आएगा, टेरी काट पहनेंगे, फिर काम कैसे करेंगे, धोबी घाट कैसे करेंगे, रोटियां कैसे बना, नहीं नहीं दादी टेरी काट के दे। दादी है दीदी विदेश हो के आए ना एक एक अच्छा तुम्हारी दिल है ना, तो ऐसा करो पैजामा सूती दे दो, कुर्ता टेरी काट का दे दो। दिया है, मतलब कट नहीं किया दादी की बात को, लेकिन इकोनॉमी बहुत थी यज्ञ के अंदर, हर चीज इकोनॉमी, एक एक चीज का इकोनॉमी की बातें सुनाओ ना, अगर आज वो इकोनॉमी होना तो शायद ही कोई यहां ठहरे। हम लोगों को अगर ये बाल कटाने होते ना, बड़े हो जाते, और उस समय केवल 12 आने 8 आने पैसा लेता था नाई बाल काटने वाला, मेरे को देखती थी, अरे तेरे बाल भी कहां बड़े हुए, क्यों कटाने जा रहा है, ठहरो ठहरो थोड़ा ठहरो, 8 आना तुम देगा नाई को, नहीं नहीं माना एक एक चीज। अगर मान लो लौकिक में पत्र लिखना हो ना, एक लिफाफा 50 पैसे का, पत्र लिखने के लिए लिफाफा नहीं है किसी के पास, नहीं मिलेगा। ऐसा करो कागज के टुकड़े पर लिख के आओ, 10-12 लोग जो उधर के हैं ना, वो सब एक साथ लिख के आओ, एक लिफाफे में सबके भेज देंगे, टीचर को भेज देंगे, टीचर तुम्हारे माँ बाप को दे देगा। एक लिफाफा भी मांगने से भी नहीं मिलता। अगर एक फल कोई खाना हो किसी को, तुमको जो खाना है तुमको चाहिए, चिटकी रखो, लिख के दे दो, मिल जाएगा यज्ञ से, खरीद के नहीं खाना, बाहर नहीं खरीदना। एक दिन क्या हुआ, कोई ले आया होगा बाहर से केला, अब केला खाएगा तो छिलका कहीं डालेगा, तो डस्टबिन में केले के छिलके पड़े थे, तो एक जो सफाई कराने वाली माता थी ना, उसको पता नहीं क्या आया, वो छिलके उठा के दीदी के पास ले गई। दीदी ये जो भाई लोग है ना, फल लेकर के आते हैं खाते हैं, अच्छा ये फल खाते हैं बाजार से लेकर के, बुलाओ सबको, हो गया क्लास हमारा। किसके किसके पास पैसे हैं, सब अपने पैसे बताओ, कितने कितने रखे तुम लोगों ने, लिख कर दो, 1 रुपया नहीं रख सकता कोई, यज्ञ से जो लेना है लो, सब कुछ यज्ञ से मिलेगा, लेकिन पर्सनल कोई खरीद नहीं सकता, पर्सनल कोई दे नहीं सकता, ला नहीं सकता। बहुत कुछ बिगड़ी पार्ट था, और उसमें भी सेवाएं इतनी, त्याग इतना, लेकिन प्यार इतना, जो प्यार में सब बंधे हुए थे, कोई भी काम हो ना, अब हम धोबी घाट करते थे, छटका लगाते थे पाटे पर, 2-3 भाई छटका लगाते, कोई नील लगाता, कोई पानी निकालता, कोई सुखाता, 8-10 का हमारा ग्रुप धोबी घाट का था, लेकिन जो छटका लगाता उसको डबल हलवा मिलेगा गरम गरम, और दादी खुद दीदी आएगी लेके, आओ 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 डबल हलवा खिलाते हैं, तुमने बहुत मेहनत किया सवेरे सवेरे। तो प्यार में कमी नहीं थी, पालना में कमी नहीं थी, लेकिन सेवाएं तो सब कर्मणा थी। तो वो त्याग तपस्या में दीदी दादी ने सबको एक किया, वृद्धि किया, विस्तार किया, और कभी भी एक दूसरे की बात को कट नहीं किया। दीदी को अगर हमने कोई बात सुनाई और हम कहे नहीं दीदी ने कट किया, तो दादी से मनवा लेंगे, दीदी ने तुमको बोला, दादी कुछ कट करेगी क्या, जो दीदी ने कहा वही मानेगी दादी। कभी उन्होंने किसी की बात को सपोर्ट नहीं किया, दीदी दादी एक होके रही। इसलिए कहते थे शरीर 2 है आत्मा 1 है।
तो ये लंबी कहानी है दीदी दादी की। दीदी दादी मैं ना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ भाई जी, कई लोगों को नए लोगों को शायद लग रहा होगा। दीदी मनमोहनी दीदी, ये यज्ञ के शुरू में ब्रह्मा बाबा का व्यक्त होने के बाद जिसे भाई जी ने बताया, मनमोहनी दीदी आदि रत्नों में से थी। और दादी हम शुरू से ही बड़ी दादी को बड़ी दादी दादी कहते थे, प्रकाशमनी दादी। तो ये दोनों की कहानी भाई जी ने सुनाया। एक मेरे मन में प्रश्न है भाई जी कि बाबा तो ब्रह्मा बाबा साकार में जब थे तब तो की यज्ञ को खुद अपने हाथों में लेकर के चले। अब जैसे बताया आपने अभी जनवरी माह आ रहा है, तो 18 जनवरी के बाद बाबा ने दीदी और दादी को यज्ञ को चलाने के निमित्त बनाया। क्या क्या चुनौतियां इनके सामने आई? एकदम से नया रूपरेखा, दादी को मधुबन का इतना अनुभव नहीं, बाहर ही रहती थी जैसे आपने बताया, और दीदी जो थी वो भले गृहस्थ बड़ी से आई थी, लेकिन यज्ञ को चलाना, ये मधुबन को चलाना, ये उस उन दिनों दीदी और दादी के सामने किस तरह की बातें चुनौती आई और कैसे इनका सफल संचालन दोनों ने किया?
क्या है, जब कोई संस्था का हेड जाता है तो हर संस्था के टुकड़े हो जाते हैं दूसरे स्थानों पर। तो लेकिन बाबा की दूरादेशी बुद्धि, बाबा ने कन्याओं माताओं के हाथ में सौंपा और उन आत्माओं में सौंपा जिनको जरा भी मैंपन न हो। जहां मैं होगा वहां टकराव होगा। दीदी दादी ने मैं को ही मारा हुआ था। दादी तो कभी मैं बोलती नहीं थी, कोई बात अगर पत्र भी लिखाती थी ना तो कहती थी दादी का ये विचार है, दादी कौन है, मैं हूं ऐसा नहीं, दादी का मैं थर्ड पर्सन जैसे बोल रहा है। तो इन दोनों ने अपने आप को संपूर्ण निरहंकारी बना के रखा और उस निरहंकारीपन से आने वाली सभी चुनौतियों का सामना कर लिया। पहले तो अपने परिवार में ही आती है, क्योंकि अगर एक को पोस्ट मिलती है तो दूसरे को ईर्ष्या तो होगी ना, नेचुरल। उनसे बड़ी बड़ी दादियां थी, पहले से बड़ी थी, अनुभवी भी थी, कई प्रकार से लौकिक में भी बाबा के संबंध थे, लेकिन बाबा ने लौकिक को आने नहीं दिया। तो सबसे बड़ी चुनौती तो परिवार में पहले आती, बड़े छोटे की। लेकिन दीदी दादी ने कभी ये नहीं कहा मैं बड़ी हूं। उन्होंने जब भी वो लोग आए बड़े जो भी थे अनुभवी पुराने, उनको आगे सीट दिया, उनको मुरली दिया क्लास में सुनाने के लिए, उनसे राय लिया, उनको बुलाया हर बात में, तो सबको सम्मान दिया। तो सबसे बड़े परिवार की चुनौती को उन्होंने अपने से सबको आगे रख के पार कर लिया। दूसरी जो बाहर की चुनौतियां आई, तो बाबा कहता था बच्चे निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, कभी भी निंदक से दूर नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं। और बाबा तो साथ था ही, इसलिए बाबा के साथ के कारण मैं समझता हूं हर बात को बहुत सहज पार किया। और एक बल एक भरोसा, और उसमें भी दादी का एक ध्यान रहता था, कोई भी पेपर आए योग से पार करना है, 2 बजे योग करो, उठो सभी बैठ जाओ, कोई भी परीक्षा आई है योग करो। क्योंकि इनकम टैक्स की आई, विस्तार हुआ, मकानों की आई, बहुत सारे सेंटर्स खुले, कई प्रकार के लोगों ने विरोध किए, बाबा ने कहा, दादी ने कहा नहीं, और कोई रास्ता नहीं, योग योग योग। तो रोज हम लोगों को हर शनिवार को 2 बजे जो अच्छे इंटरेस्टेड योगी होते थे, दादी खुद आके योग कराती थी, आओ बैठ जाओ 2 बजे, सोफा कुर्सी नहीं है, गद्दियां लगा देते। तो योग से हर चुनौती का सामना किया, चाहे सरकार के द्वारा आई, चाहे परिवार के द्वारा आई, चाहे संबंध संपर्क में आई, कोई चीज की परवाह नहीं की, क्योंकि बाबा इसका किवैया है। बाबा ने कहा है सच की नैया हिलती है डूबती है लेकिन डूबती नहीं है।
जी भाई जी, आपने तो बहुत छोटेपन से ही बाबा की यज्ञ में आ गए, सब दादियों का प्यार आपने पाया और जानकी दादी से भी आपका बहुत स्नेह रहा, गुलजार दादी को आपने बहुत नजदीक से देखा भगवान को आते हुए, भगवान को पधारते हुए। अब जो नए नए भाई बहने आजकल जो आ रहे हैं भाई जी, हमारी विदेशी भाई बहने और खास करके जो नए आ रहे हैं, ये सब दादियों को बहुत मिस करते हैं और खास करके जानकी दादी को। तो अब जो नए जो बाबा के बच्चे बन रहे हैं, वो दादियों की कमी की अनुभूति कैसे करें, उसकी उनकी प्यार की अनुभूति ये लोग किस रूप में करें, ये मेरे मन में थोड़ा प्रश्न है भाई जी।
खैर पार्ट तो नंबर वार होता ही है, अब हम कहें हमने साकार को नहीं देखा, इन्होंने देखा नहीं, तो एक जैसा पार्ट तो हमेशा नहीं चलता, पार्ट तो चेंज होते ही हैं। और जब दादियों की इतनी बड़ी आयु हो गई, जब शरीर साथ नहीं देते हैं, तो उनका एडवांस में जाना कोई प्रकृति के विरोध नहीं है, विपरीत नहीं है, वो तो होना ही था। हम सब जानते हैं दादी 104 साल हो गई थी। जानकी दादी हुई, गुलजार दादी भी काफी समय लास्ट में, कितना दिन तक एक ही आत्मा थी जिसने कैंसर का सामना 88 से 2007 तक किया, 2017 तक। मतलब बाबा तो दादी 2020 में गई, 88 में दादी को कैंसर डिक्लेयर हुआ था। इतनी बड़ी बीमारी में भी दादी कितना समय बाबा का रथ बन करके इतने सबकी पालना की। तो पुराने शरीर हैं वो तो जाने ही है, एक जैसा पार्ट हमेशा नहीं चलता। लेकिन वर्तमान समय भी अगर कोई का बहुत सच्चे दिल का बाबा से प्यार है, वो कहीं भी बैठता है, बाबा दादियों के यादगार स्तंभ पर भी जाता है, कहीं पर बैठता है, तो वो दादियां ऐसे लगता है जैसे छत्र छाया है और मुझे वही प्यार पालना दे रही हैं, स्तंभ हैं बैठे। और निमित्त जो भी बने हैं, हमारी मोहिनी दीदी हैं, जयंती दीदी हैं, समय अनुसार उनमें भी वो परिवर्तन दिखाई देता है। तो जैसा समय है वैसा अपने को ढालना चाहिए। वही चीजें मिल जाएंगी वो तो संभव ही नहीं है, लेकिन जो कुछ है उसमें हम संतुष्ट रहना सीखें और अपने आप को खुद ही उस तरह की स्थिति में रहें जो बाबा की दादियों की छत्र छाया है यज्ञ के ऊपर, उसका हम अनुभव कर सकें।
जी भाई जी, एक प्रश्न आया है, एक दो प्रश्न मैं ले लेता हूँ भाई बहनों के। भाई जी, सूक्ष्म मयपन क्या है और उसको समाप्त करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें?
बाबा की कई मूल्यां ऐसी चल रही हैं, चली हैं अभी अव्यक्त बाबा की। सूक्ष्म मयपन में आता है मेरी समझ, मेरी बुद्धि, मेरी प्लानिंग, मैं जो कह रहा हूं, मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, ये बहुत सक्सेस हो जाएंगे, ये सबको समझना चाहिए, ये करना चाहिए, मैं ही राइट हूं, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। अनुभव तो सबको होते हैं, लेकिन जिनको मैं होता है वो दूसरों के आगे अपने मैं को प्रकट करना चाहते हैं और लोगों को लगे कि हाँ ये बड़े बुद्धिमान हैं, इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, मुझे कोई पहचाने, मेरा कोई नाम हो, मेरी कोई शान मिले, मुझे कोई पूछे, कहीं सूक्ष्म कामनाएं अगर हैं और उसके पीछे अगर नहीं हो प्राप्त होता, उसकी खुशी गायब होती है। बाबा कई बार कहते हैं जहां पर अभिमान होता है, जरा भी अभिमान होता है, वहां व्यक्ति अपमान सहन नहीं कर सकता, उसकी बातें अगर कोई उल्टी एक बात भी उसको इशारे में बोल देंगे सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैंपन का अगर सूक्ष्म त्याग कर दिया तो बहुत नम्रचित, बहुत मधुर भाषी, बहुत सरल स्वभावी अनेक गुण आपके अंदर आ जाएंगे। इसलिए मैं को त्यागना बहुत जरूरी है।
जी जी जी, लौकिक में रहते हुए हम दादी जैसा इंस्ट्रूमेंट कैसे बने, ये किसी का प्रश्न है भाई जी।
दादी जैसा इंस्ट्रूमेंट किसको बनना है? बनना है जरूर बनना है, लक्ष्य रखोगे तो हो जाएगा, लक्षण आ जाएंगे। दादी जैसे फ्राक दिल बनो, दादी जैसे एक वृत्ता बनो, दादी जैसे इकोनॉमी करो, दादी जैसे एक नामी बनो, बन जाओगे दादी जैसे। यही तो गुण थे दादी के, इतनी नम्रचित, इतनी निर्मल वाणी, इतना मिलनसार, कैसे बच्चों को पाला, कैसे बढ़ाया, निमित्त निर्माण, निर्मल वाणी और सदा निर्वाण स्थिति, ये सब दादी जी की क्वालिटी थी। इनको फॉलो करेंगे तो दादी जी से बन जाएंगे।
किसी का प्रश्न है कि लौकिक और अलौकिक दोनों तरफ से बहुत पेपर आते हैं मेरे पास, वो पेपर से मैं कैसे पास हूँ?
वो तो बहुत भाग्यवान है पेपर नहीं आएंगे तो कैसे पढ़ाई का पता चलेगा? इसलिए पेपर से डरना नहीं है, पेपर को सोच सोच के बड़ा नहीं करना, आया है जाएगा। कोई भी पेपर कोई सदा नहीं होता, बाबा तो पेपर हाल एक दो घंटे में बैठाना होता है, पेपर क्लास बढ़ाने के लिए आगे आता है, स्थिति को देखने के लिए आता है। मेरे आगे पेपर आया, मेरे आगे वर्णन करके चिंतन करके उस पेपर को बढ़ाओ मत। बाबा साथ है, बाबा के हाथ में हाथ है, श्रीमत की लकीर के अंदर रहना है, पेपर अपने आप चला जाएगा। श्रीमत में मन मत और पर मत ऐड नहीं करना, पेपर में पास हो जाओगे। जिसने उसमें मन मत ऐसा कैसे होगा, कौन पास हुआ है, हार जाएंगे। मुझे पास होना है, मुझे नंबर वन लेना है। पेपर किसके आगे नहीं आए, शरीर का पेपर आया, संबंधों का पेपर आया, मन का पेपर आया, तन का पेपर, कौन से पेपर किसके आगे नहीं आए। और जिसने उसको क्रॉस किया वो आगे बढ़ गए, और जिसने सोचा वो वहीं की वहीं रह गए। इसलिए बाबा कहता पेपर आने दो, पेपर गुड साइन है
जी। लास्ट प्रश्न है भाई जी, योग युक्त और युक्ति युक्त बोल कैसे हो?
अगर कम धीरे मीठा बोलते हैं तो योगयुक्त होके बोलते हैं। इसलिए ध्यान देना हमारे बोल ही सबके पर सम्मानजनक हों, जो जरूरी है वही हों। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, युक्ति युक्त बोलो, जो जरूरी है वही बोलो, नहीं तो चुप हो जाओ। अगर अपने संबंधों को ठीक रखना है तो ये जबान पर कंट्रोल रखो बस।
तो दादियों के बारे में सुन रहे हैं और आप सबको ज्ञात हो भाई जी से, लास्ट में एक बात मैं सबसे शेयर दादी भाई जी द्वारा सुनना चाहता हूँ। एक बार भाई जी के लौकिक घर में 36 दादियां गई थी, 36 दादियां। तो वो 36 दादियां भाई जी थोड़ा हमारे भाई बहनों को सुना दीजिए, कब की घटना है और आपका वो क्या अनुभव रहा है?
1960 में हमारे मातेश्वरी 35 दादियां और मम्मा ये कानपुर में आई थी। हमारे गांव में कैसे करीब 2 घंटे के रास्ते पर कानपुर है, गांव है एकदम छोटा। गांव में जो नहर चलती है ना, नहर पानी की नहरें, तो नहर कैनाल के जो ओडसियर साहब थे वो ज्ञानी थे। और वो जब आए गांव में ओडसियर साहब उस कोठी में, तो पिताजी उनके संपर्क में आए क्योंकि पंचायत सेक्रेटरी थे। तो पंचायत सेक्रेटरी जब आए और उनको ज्ञान अच्छा लगा, तो मम्मा को निमंत्रण देने के लिए हमारे लौकिक पिताजी और वो पंचायत, वो जो हमारे ओडसियर साहब थे, वो दोनों कानपुर गए। और ये तो सब दादियां फ्री होती थी, कोई सेवा तो इतनी थी ही नहीं, सेंटर्स नहीं थे। एक उन्नाव में था, एक कानपुर में था, एक 2 लखनऊ में थे, ये सब आजू बाजू के शहर हैं। तो मम्मा ने कहा हाँ हाँ गाँव में चलेंगे। तो कैसे चलेंगे, तो एक बड़ी मिनी बस किया 35-36 की। बस पुरानी थी, रास्ते में खराब हो गई, क्योंकि रास्ते तो ठीक थे ही नहीं, सब कच्चे रास्ते थे। तो उसको धक्का दे करके कैसे भी करके ले आए। और फिर जब आए तो वहां पर लेटरिन बाथरूम, बिजली नहीं, कुछ साधन नहीं, गांव में तो कोई साधन नहीं। तो टेम्परेरी सब पिताजी ने सब व्यवस्था कराई सबके लिए, अलग अलग लेटरिन बाथरूम उसके 3 सीट के लगाए बनाए, और गैस होती है जो माइक्रो लाइट के लिए, वो तैयारी किया। 3 दिन मम्मा वहां रही दादियों के साथ, और चाचा जी पिताजी उनके वो बैलगाड़ी में घुमाना, इधर उधर ले जाना। और हम तो 4 साल के थे, इसलिए मुझे याद नहीं है, मम्मा की गोदी में तो गए होंगे तो इसलिए उतना कुछ याद नहीं है। लेकिन दादियां उस समय गई और उसकी कहानियां हैं। उसके बाद जब जाने लगी वापस तो मेरे घर में ही पाठशाला खुलवा दी
जी। तो भाई जी के साथ सुंदर अनुभव आप सब आज सुने, और अपना कीमती समय निकाल करके भाई जी अपना आज हम सब के मध्य आए। और वैसे तो बहुत त्याग तपस्या की कहानियां हैं, और कभी भाई जी के पास समय हो तो जरूर आप सबके साथ शेयर करेंगे। एक बार दिल से भाई जी का आप सबके तरफ से धन्यवाद, धन्यवाद। अभी हम सभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।